नक्श इशिका को जबरदस्ती अपने साथ ले जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी अभिमन्यु वहां पहुंच गया। अभिमन्यु को देखते ही नक्श के चेहरे का रंग उड़ गया। अभिमन्यु ने उसे अच्छी तरह से संभाला। नक्श अपने आप ही वहां से चला गया। वहीं अभिमन्यु के वापस आने पर राजवंश परिवार ने राहत की सांस ली। अभिमन्यु उन सबसे मिल रहा था और फिर उन्होंने साथ में डिनर करने का फैसला किया। इसी बीच राजवंश विला में एक नई गाड़ी आकर रुकी। हैरानी की बात थी कि राजवंश विला में किसी भी अनजान गाड़ी को अंदर नहीं आने दिया जाता था, लेकिन गार्ड ने उस गाड़ी को नहीं रोका। जैसे ही उस गाड़ी से निकले शख्स को पूरे राजवंश परिवार ने देखा तो वे सब हैरान रह गए। अभिमन्यु ने सिर पकड़कर धीरे से बड़बड़ाकर कहा, हाँ बस इन्हीं के आने की कमी रह गई थी। कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही हूँ? ये अंजलि राजवंश विला में क्या कर रही है? मुझे अच्छे से याद है कि प्रशांत को छोड़ने के बाद उसने अभिमन्यु तक की खैर खबर नहीं ली थी, वसुधा ने हैरानी जताते हुए कहा। हाँ, उनके सामने खड़ी शख्स कोई और नहीं बल्कि अंजलि चौहान थी, जो सुनैना की कॉल के बाद इतनी परेशान हो गई थी कि अभिमन्यु को देखने के लिए सब कुछ भूलकर राजवंश विला आ गई थी। राधिका के लिए उसका चेहरा पहले भी अनजान नहीं था, जबकि इशिका अंजलि से मिल चुकी थी। अंजलि वहां पर आ तो गई थी, लेकिन अभिमन्यु को अपने सामने देखकर चीजें उसके लिए आसान नहीं रहने वाली थीं। अभिमन्यु बिल्कुल सही सलामत उसके सामने खड़ा था। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने यहाँ आने की क्या वजह बताए। अंजलि अपनी गाड़ी से कुछ दूरी पर खड़ी थी। उसने मन ही मन बड़बड़ाकर कहा, मेरी गलती है जो मैं उसकी बातों में आकर बेवकूफों की तरह यहाँ तक चली आई। मुझे इस लड़के के होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर न जाने क्यों मेरे कदम यहाँ तक चले आए और कुछ होश नहीं रहा। सुनैना ने अंजलि को आधी अधूरी बातें बताई थी, जिससे अंजलि को ये लगा कि अभिमन्यु अब इस दुनिया में नहीं रहा है। ऐसे में वो एक अलग ही इमोशनल जोन में चली गई थी और बिना सोचे समझे वहां चली आई। अंजलि को वहीं पर खड़ा हुआ देखकर अभिमन्यु खुद चलकर उनके पास जाने लगा। इशिका और वसुधा भी उसके पीछे पीछे आ रही थीं। पार्थ के लिए अंजलि का चेहरा नया था, तो वो जानना चाहता था कि वो कौन थी जिसे देखकर अचानक उन सबके चेहरों के रंग उड़ गए थे। अंजलि के पास पहुंचकर अभिमन्यु ने भौंहें उठाकर कहा, मिस चौहान, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? आप जानती हैं ना कि इस वक्त आप कहाँ खड़ी हैं? अभिमन्यु की आवाज़ सुनकर अंजलि का ध्यान टूटा। उसने अभिमन्यु की तरफ देखकर हाँ में सिर हिलाया। वहीं अंजलि को फिर से अपने सामने देखकर वसुधा को गुस्सा आ गया। जब अभिमन्यु की उसने जल्दबाजी में डिलीवरी करवाई थी, तब सबने उसे बहुत समझाया था, खासकर वसुधा ने, लेकिन अंजलि ने उनकी एक नहीं सुनी। उसके छोड़ जाने के बाद जब अभिमन्यु बीमार रहता था, तब भी अंजलि से कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की थी, पर अंजलि ने कभी अपनी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। आज अचानक फिर से उसे अपने सामने देखकर वसुधा ने सख्त आवाज में कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सबकी तरह यहाँ ये तमाशा देखने आई हो कि मेरा बच्चा जिंदा है या नहीं? आप मुझे गलत समझ रही हैं, अंजलि ने उनकी तरफ देखकर कहा। गलत तो मैं तुम्हें पहले समझती थी, जो मुझे कुछ उम्मीद थी कि मेरे बच्चे के लिए तुम वापस आओगी। वापस नहीं आना था तो इसे लेकर चली जाती, वही मेरे लिए काफी होता। कम से कम ये बिना माँ के इतना बीमार नहीं रहता। अब मैं तुम्हें बिल्कुल सही समझ रही हूँ, गलती से भी इस पर हक जमाने की कोशिश मत करना, वसुधा ने तेज आवाज में कहा। इतने सालों में पहली बार उन्हें अंजलि को उसकी गलतियों पर सुनाने का मौका मिला था। उन्होंने एक बार में ही सारी भड़ास निकाल दी थी। अंजलि खुलकर अपने इमोशंस तक नहीं बता पा रही थी। अभिमन्यु को अपने सामने देखकर उसे दिल ही दिल में राहत महसूस हो रही थी। वहीं पार्थ अंजलि की तरफ गौर से देख रहा था। पार्थ ने अपने मन में कहा, ओ तो ये है अंजलि चौहान, मानना पड़ेगा इस औरत के सीने में दिल है ही नहीं जो अपने बच्चे को इस तरह पैदा करके छोड़कर चली गई। प्रशांत राजवंश से हम सब नफरत करते हैं, अगर ये भी करती है तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है, पर अपने ही बच्चे से कौन नफरत कर सकता है? वो सिर्फ प्रशांत का बेटा नहीं था। अंजलि ने गहरी सांस ली और काफी हिम्मत करके कहा, मैं यहाँ गोवा आई हुई थी। अंजलि अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले अभिमन्यु ने बिना किसी भाव के कहा, यहाँ हर दिन हजारों लोग गोवा आते जाते हैं। राजवंश विला कोई गेस्ट हाउस नहीं है जो आप मुंह उठाकर यहाँ चली आईं। मुझे समझ नहीं आता कि आपके यहाँ आते वक्त बिल्कुल भी शर्म महसूस नहीं हुई। किस हक से आपने यहाँ कदम रखा है मिस चौहान? सालों पहले आपने इस घर से और यहाँ रहने वाले लोगों से रिश्ते तोड़ दिए हैं, फिर कोई मतलब नहीं बनता यहाँ आने का। इसे सुनाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि दूसरों की बातों का उन पर असर होता है जो सेंसिटिव होते हैं। इसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका दिल पत्थर का है। आज भी जरूर अपने फायदे के लिए ही आई होगी। अब यहाँ तक चलकर आ ही गई हो तो बता भी दो कि अचानक तुम्हें इस घर के लोगों से कौन सा फायदा नजर आने लगा जो इतने सालों की नफरत तक भूल गई, वसुधा ने उसे अच्छा खासा सुनाते हुए कहा। उन सब की बातों ने अंजलि को भी गुस्सा दिला दिया था। वो उन पर चिल्लाते हुए बोली, बस कीजिए आप लोग, आप लोगों का मन नहीं भरता दूसरों को ब्लेम करते हुए। एक बार भी नहीं सोचा कि उस वक्त सिर्फ 19 साल की थी मैं और मुझे कितना कुछ सहना पड़ा। अचानक से एक बिजनेस डील का नाम लेकर मेरी शादी मुझसे दुगनी उम्र से भी ज्यादा आदमी के साथ कर दी गई। नहीं चाहिए था मुझे उसका बच्चा, और क्यों रखती मैं उसे अपने पास? उसकी जबरदस्ती की निशानी को अपने साथ रखकर मैं हर पल खुद को तड़पाना नहीं चाहती थी। मुझे मूव ऑन करना था, ना कि अपने जख्मों को और हरा करना। अंजलि की बातें सुनकर अभिमन्यु का मन कड़वाहट से भर आया था। उसने तंज भरी मुस्कुराहट के साथ कहा, आपसे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मांग रहा है मिस चौहान। इनफैक्ट मैं तो आपको जानता भी नहीं। पिछली बार भी आप मेरे सामने आई थी क्योंकि आपको अपनी सो कॉल्ड गलतियों की वजह से आना पड़ा था। आज तो कोई मजबूरी नहीं थी, तो फिर क्यों जबरदस्ती की निशानी को देखने के लिए अपने जख्मों को हरा करते हुए यहाँ मेरे सामने चली आई हो? अभिमन्यु का एक एक शब्द अंजलि के सीने पर तीर की तरह लग रहा था। उसकी आंखें गीली हो रही थीं। वो जल्दी जल्दी पलकें झपकाते हुए अपने आंसुओं को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। सिर्फ उसे ही नहीं, अंजलि के शब्दों से तकलीफ तो अभिमन्यु को भी पहुंची थी। अंजलि ने गहरी सांस ली और अपने गुस्से को काबू करके कहा, मुझे किसी ने कॉल करके कहा कि तुम इस दुनिया में नहीं रहे हो। मैं घबरा गई थी तो आ गई। अंजलि की बात सुनकर अभिमन्यु जोर से हंसा, जैसे उसने कोई जोक मारा हो। अंजलि हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। अच्छा, सच में? जब मैं 2 महीने का था तब दादी ने आपको कॉल करके कहा था कि मैं अपनी आखिरी सांसें ले रहा हूँ, तब भी आप नहीं आई थी। कहते हैं एक बच्चे के लिए तो किसी का भी दिल पिघल जाता है। अब तो फिर भी मैं बड़ा हो गया हूँ, किसी ने कॉल किया और आप आ गई। कम से कम बहाना तो ठीक से बनाइए जिस पर यकीन हो सके, अभिमन्यु ने उसे टॉन्टिंग बेमी कहा। अंजलि की कोई भी दलील और इमोशन काम नहीं आ रहे थे जो अभिमन्यु का दिल पिघल सके। आखिर उसका दिल क्यों पिघलता? अंजलि से कभी उसे माँ का प्यार नहीं मिला था। मेरा यकीन करो, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, अंजलि ने अभिमन्यु की आंखों में देखते हुए कहा। सॉरी मिस चौहान, आपने कभी मुझे यकीन करने की कोई वजह नहीं दी है। दरवाजा उस तरफ है, अभिमन्यु ने जवाब दिया। अंजलि के पास कहने को कुछ नहीं था। उसने एक नज़र ईशिका और वसुधा की तरफ देखा और फिर वहां से जाने ही लगी थी कि अचानक हाउस हेल्पर दौड़ता हुआ उसकी तरफ आया।
सर, हमारा घर सी एरिया के आसपास है। एक्चुअली वहाँ हाई टाइड्स अलर्ट हुआ है, तो पुलिस ने इस पूरे एरिया में कर्फ्यू लगा दिया है। मैं आपको ये इन्फॉर्म करने के लिए आया था कि फिलहाल कोई यहाँ से बाहर ना जाए, उसी में सही रहेगा, हाउस हेल्पर ने बताया। एक पल के लिए वहाँ पर सन्नाटा छा गया था। न चाहते हुए भी अंजलि वहाँ पर फंस गई थी। बाहर पुलिस का कड़ा पहरा था और जिस तरह की सिचुएशन बन रही थी उस हिसाब से अंजलि का जाना सही भी नहीं था। अभिमन्यु कभी नहीं चाहता था कि अंजलि वहां पर रुके या उसकी आंखों के सामने भी रहे। उसने कुछ नहीं कहा और ऋषिका का हाथ पकड़कर कहा, मैं बहुत थक गया हूँ, रूम में चलते हैं। अभिमन्यु ने सारा फैसला वसुधा के ऊपर छोड़ दिया था और ऋषिका का हाथ पकड़कर सीधा अपने कमरे में जाने लगा। अंजलि की निगाहें अभी भी उसे जाते हुए देख रही थी, मानो उसका अभिमन्यु को देखने से मन ही न भरा हो। जब तक वो अभिमन्यु से दूर थी तब तक उसका अभिमन्यु से मिलने का कभी मन नहीं किया था। उसने अपनी ममता को प्रशांत के दिए जख्मों से दबा कर रखा था, लेकिन अभिमन्यु के सामने आने पर वो चाहकर भी अपने इमोशंस को कंट्रोल में नहीं कर पा रही थी। वसुधा ने नफरत भरी निगाहों से अंजलि की तरफ देखा और कहा, आज की रात यहीं पर रुक सकती हो, उम्मीद है कि अभिमन्यु के सामने नहीं आऊंगी। मैं किसी होटल में रुक जाऊंगी, अंजलि ने सख्त आवाज में कहा। वो अभिमन्यु के सामने जरूर कमजोर पड़ गई हूँ, लेकिन वो कोई कमजोर शख्सियत नहीं थी। अगर बात अभिमन्यु की नहीं होती तो अंजलि किसी के ताने नहीं सुनती। चिंता मत करो, घर में नहीं आने को कह रही हूँ, बाहर साइड गेस्ट के लिए जो विला बना हुआ है उसी में रुकना है। रही बात होटल में जाने की, तो किराया देकर जाना, होटल समझकर ही रुक जाओ, वसुधा ने बिना किसी भाव के कहा और फिर राधिका के साथ वहां से चली गई थी। मैं ही बेवकूफ थी जो उस औरत की बातों में आकर यहां तक चली आई, अंजलि ने सिर पकड़कर कहा। अब उसे अपने यहां आने के डिसीजन पर पछतावा हो रहा था। एक एक करके सभी लोग चले गए थे, लेकिन अंजलि के साथ पार्थ वहीं पर रुका हुआ था। उन सबके जाने के बाद पार्थ अंजलि के पास आया और सार्कास्टिक स्माइल के साथ बोला, डॉक्टर अंजलि चौहान, आपको याद नहीं होगा लेकिन हम एक सेमिनार में मिल चुके हैं। मैं दिन में कई लोगों से मिलती हूँ, मुझे नहीं याद रहता, अंजलि ने काफी बेरुखी से जवाब दिया। याद तो मुझे भी नहीं रहता, पर अभी अभी आपका जो इंट्रो मिला उसके बाद याद करना बनता है। मैंने तो सुना है आप बहुत बिजी रहती हैं और आपके पास टाइम नहीं होता, फिर अचानक अपने बेटे को देखने के लिए यहाँ पर पहुँच गई। ये तो सोच लेती कि यहाँ आने के बाद आपकी अच्छे से इज्जत अफजाई जरूर होगी, पार्थ ने सिर हिलाकर कहा। उसके इस तरह तंज भरे लहजे में बात करने पर अंजलि ने उसकी तरह घूर कर देखा और कहा, एक्सक्यूज मी, हू द हेल आर यू जो मुझे यहाँ खड़े होकर सुन रहे हो? अपना सिंपल सा इंट्रोडक्शन देता हूँ, आपके बेटे को बर्बाद करने आया हूँ, उस औरत का बेटा हूँ जिसकी जिंदगी आपकी वजह से बर्बाद हुई, पार्थ ने बिना कुछ छुपाए अंजलि के सामने सच रख दिया था। उसे जरा भी डर नहीं था कि अंजलि को सच बताने का क्या नतीजा हो सकता है। अंजलि की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। वो बोली, तुम सुनैना के बेटे हो? उसने मुझे कॉल करके यहाँ आने पर मजबूर किया था। तुम यहाँ मेरे बेटे को बर्बाद करने के मकसद से आए हो? वो लोग तुम पर भरोसा कर भी कैसे सकते हैं? मैं अभी तुम्हारी सच्चाई सबको बताने वाली हूँ। अंजलि जल्दी से अपने कदम राजवंश विला की तरफ बढ़ाने लगी, तभी पार्थ ने पीछे से हंसते हुए कहा, और आपकी बात पर कौन यकीन करेगा मिस चौहान? आपका वो बेटा जो थोड़ी देर पहले आपको दुनिया भर की बातें सुनाई जा रहा था, वो तो आपकी शक्ल तक नहीं देखना चाहता है। आपको क्या लगता है मैंने अपने इरादे आपको ऐसे ही बताए हैं? सबके सामने खड़े होकर चिल्ला चिल्ला कर भी सच बताओगी तो भी कोई यकीन नहीं करेगा। अब तो और मजा आएगा उसे बर्बाद करने में। आप मुझे ऐसा करने से नहीं रोक पाएंगी। अंजलि को अब समझ आ गया था कि पार्थ ने उसे सब क्यों बताया था। उसे अंजलि से कोई खतरा नहीं था। अंजलि अगर सबके सामने सच भी बताती तो कोई उस पर यकीन नहीं करता। अंजलि वहां दुविधा में खड़ी थी। सच जानने के बाद भी वो अभिमन्यु को प्रोटेक्ट नहीं कर सकती थी। अब आएगा गेम में मजा जब अंजलि की एंट्री हुई है। देखते हैं आगे क्या होता है। आप बस पढ़कर समीक्षा कर दीजिएगा। अगले चैप्टर में मिलते हैं। वैसे अंजलि और अभिमन्यु की मुलाकात हमेशा दिलचस्प होती है।